ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे वीरेंद्र भाई ने सुनाया, आज का टॉपिक है पूछ मुक्त, निर्विघ्न स्थिति। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, बोझ मुक्त और निर्विघ्न स्थिति। क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे जो भगवान के बनते हैं, और उससे पहले की जो हमारी लाइफ होती है, अनेक प्रकार के बोझों से आत्मा दबी हुई होती है, और जो बोझ में दबा हुआ होता है वो हमेशा चिल्लाता है, निकालो बचाओ। तो हम सब भी बाबा के बनने के पहले क्या करते थे, अनेक प्रकार से चिल्लाते थे, और मैं तो यही कहेंगी लौकिक जीवन के अंदर कंप्लेन के सिवाय और कोई बात ही नहीं थी। हर एक अपने जीवन में जाके और देखे, कंप्लेन 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 कंप्लेन, है ना। सदा ही ये कहते, ये ऐसा है वैसा है, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, सारे दिन कंप्लेन करते। लेकिन हमारे बाबा ने हम सबको एक मंत्र दिया कि बच्चे, कंप्लेन करने वाला कंप्लीट नहीं बन सकता है। अभी हम बाबा के बच्चे कंप्लीट बनने के लिए आए हैं। हम सबको बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को हम सदा स्मृति में रखें। पहली बात तो हम बाबा के क्यों बने हैं, है ना, क्यों बने हम सभी। भगवान के बनने का कोई तो कारण होगा, अगर उन कारणों की हम गिनती करें या समस्याओं की हम गिनती करें तो उन समस्याओं का एक पहाड़ बन जाएगा, और उस पहाड़ के बोझ में हम सभी आत्माएं थी। लेकिन बाबा ने हम सब बच्चों को अपना बनाकर के उस पहाड़ जैसी बातों को भी बाबा ने राई बना दिया है, पहाड़ को राई। अब आत्मा के ऊपर कौन कौन से बोझ होते हैं, आत्मा के ऊपर बोझ तो बहुत है ना। हम सभी कहते हैं कि हमारे 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है ना। 21 जन्म हमारे श्रेष्ठ थे, लेकिन हमारे ऊपर 63 जन्मों का बोझ है, आत्मा के ऊपर बोझ है। अब आत्मा के ऊपर कौन सा बोझ है? आत्मा के ऊपर कौन सा बोझ है? विकर्मों का बोझ है, पाप कर्मों का बोझ है, है? जिसके नीचे आत्मा अपने को क्या फील करती है? दबा हुआ फील करती है। तो अपने को विकर्मों से बचने के लिए, पाप कर्मों से बचने के लिए, एकदम हल्का बनने के लिए बाबा ने हम सबको कहा कि मैं तुमको क्या बनाने आया हूं? फरिश्ता, है ना? आप सभी जो ब्राह्मण भट्टी में आए हैं तो भट्टी से क्या बनेंगे? भट्टी से क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे, हल्का बनेंगे। उसी दिन कहा था ना कि ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा के परियां फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ते को कोई बोझ नहीं होता है और मनुष्यों को बोझ होता है, है ना? और ब्राह्मणों को क्या होता है? हैं? ब्राह्मणों को क्या होता है? मौज होती है उनको, बोझ है उनको हल्का। ब्राह्मणों को क्या होता है? एकदम मौज में है। तो हम ब्राह्मण भगवान के बच्चे हैं। ब्राह्मण कौन कहलाते? भगवान के बच्चे। तो हम सभी कौन है? भगवान के बच्चे हैं। और भगवान के बच्चे कैसे होंगे? हैं? भगवान के बच्चे कैसे होंगे? कहते ना, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी मां वैसी बेटी, कहे ना। हमारा बाप कौन है? शिव बाबा, सर्वशक्तिवान, सर्व समर्थ हमारा बाप है। और हमारी मां कौन सी मां? ब्रह्मा मां। तो ब्रह्मा मां भी क्या है? ब्रह्मा मां भी क्या है? सदैव की। तो जैसा हमारा बाबा है वैसा अब हम बच्चों को बनना है। और बाबा हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए आया है ना? बाबा क्या बनाता है? अपने समान। तब कहता है निर्विकारी, निरहंकारी, है ना, निराकारी। तो जो निर्विकारी है, निरहंकारी है, निराकारी है, उसको क्या बोझ है? आत्मा को कोई बोझ है? है? कोई बोझ है आत्मा को? देखो, आत्मा तो उड़ता पंछी है, है? बाबा क्या कहता है बच्चे? आत्मा उड़ता पंछी है। एक सेकंड में आत्मा कहां से कहां चली जाती है? कैसे जाती है? शरीर नहीं है, अपने असली स्वरूप में वो स्थित है, इसलिए वो एक सेकंड में कहां से भी कहां पहुंच जाती है। इतनी आत्मा हल्की है, है ना। और बाबा भी हम बच्चों को अब इतना हल्का बना रहा है। बाबा कहते बच्चे कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, है? बाबा हमारा बाप है, माँ है, टीचर है, सतगुरु है। बाबा कहते मैं सब बोझ तुम्हारे लेने के लिए तैयार हूं। बाबा लेने के लिए तैयार है? बाबा हमारा बोझ लेगा? लेगा? आप दोगे तो लेगा, है ना। देना भी आना चाहिए, देखो ना, देना भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और जब हमको देना आता है तो भगवान भी वही स्वीकार करता है, है ना। देने देने में क्या होता है, अंतर होता है। कोई चीज प्यार से दी जाती है और कोई कोई क्या करते हैं, लो, है ना। तो फिर एक है मजबूरी से देना, एक है राजी से देना। और जो राजी से देगा, है, जो राजी से देगा वो प्यार पाएगा, रिगार्ड पाएगा, रिस्पेक्ट पाएगा। और जो मजबूरी से देगा उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे सब बोझ मुझको दे दो। बोझ क्यों होता है? बोझ आता क्यों है? है? बोझ आता क्यों है? मैं पर मेरा बनाता है। बाबा कहता है बच्चे बोझ ना आए उसको अपने को क्या बनाओ, ट्रस्टी बनाओ, साक्षी बनाओ। अगर हम ट्रस्टी है, हैं, तो ट्रस्टी को बोझ नहीं है। अगर मैं करता हूं मुझे करना है तो बोझ है। बाबा कई बार हम बच्चों को शब्दों में कहते बच्चे तुम्हारी टोकरी उठाने के लिए मैं तैयार हूं, है ना, मुझे दे दो ना। मैं किस लिए आया हूं यहां? भगवान किस लिए आया है? भगवान ने हम बच्चों को अपना किस लिए बनाया है? कि बच्चे तुम्हारा जो कुछ मुझे दे दो, जो कुछ है, और हल्के हो जाओ। तुम्हारा जो कुछ भी है जिसको तुम बोझ समझते हो, है ना, उसको बाबा को देने से आत्मा हल्की हो जाती है। होती है नहीं होती है? कोई भी चीज आपको किसी ने संभालने के लिए दी हो, है ना, कीमती चीज है आपको संभालने के लिए दी है, ये मेरी चीज संभालो, तो जब तक आपके पास वो चीज होगी तब तक आपको क्या होगा, टेंशन होगा। टेंशन माना पूछ, मैं संभालो, किसी की अमानत मेरे पास रखी है, है ना, कहीं कोई ले ना जाए, कोई कुछ ना हो जाए। तो जब तक आपके पास है तब तक आपको उसका बोझ अनुभव होता है। और जब वो चीज आपने किसी को दे दी, उसकी दे दी उसको, तो आप क्या हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, चैन से सोएंगे, चैन से खाएंगे, चैन से जिएंगे। और जब तक आपके पास अमानत रखी है तब तक आपको टेंशन, फिकर, चिंता चलती रहेगी। भगवान ने हम बच्चों को यही कहा कि तुम्हारे पास जो रावण की प्रॉपर्टी रखी हुई है उसको तुमने संभाल के रखा हुआ है तब तक तुम्हारे पास वो बोझ है, और वो बोझ आपको सुखी नहीं होने देगा, है ना। और फिर उसी बोझ को अगर आपने बाबा को दे दिया, बाबा आप ये संभालो, बाबा कहता है ना, बच्चे मैं तेरी टोकरी संभालने के लिए तैयार हूं, तुम क्यों लेके चलते हो, है? भगवान संगम युग पर हमारा बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, सदगुरु भी बनता है। बाप की फर्ज क्या होती है? बाप की फर्ज क्या होती है? हर बच्चे की जिम्मेवारी बाप संभालता है ना। हमारा बाप तो वफादार है ना। आजकल के कलयुगी माँ बाप तो हाँ जिम्मेवारी भले नहीं उठाते हैं, लेकिन फिर भी जो बाप होगा ना वो हमेशा बच्चों की जिम्मेवारी उठाते हैं, है ना। टीचर होगा तो टीचर की बुद्धि में हमेशा ये रहेगा कि मेरे स्टूडेंट को मुझे पढ़ा, वो बोझ उसके पास, जिम्मेवारी उसकी है ना। तो जब वो जिम्मेवारी उठा के चलते हैं, अब शिव बाबा तो हमारा क्या है, बाप भी है, टीचर भी है, साजन भी है, है? जो संबंध चाहिए वो है, बच्चा भी बन जाता है। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं ना मां बाप की लकड़ी होते हैं, संभालने वाले होते हैं, है ना। शिव बाबा बच्चा भी आपकी संभाल करेगा, लौकिक नहीं करेंगे, लेकिन बाबा करेगा। आप बाबा को सौंपो तो बाबा आपकी जिम्मेवारी उठा करके चलेगा। भगवान माना क्या, भगवान कभी बेवफा नहीं होगा। मनुष्य होंगे लेकिन बाप तो सदा अपनी वफादारी निभाने वाला है। देखो बाबा ने हम सबके साथ में अपना बना करके हम सबको, हम सबसे बाबा ने संबंध क्यों जोड़े, है ना। संगम पर बाबा ने हम सबसे संबंध क्यों जोड़ा है? भक्ति में सिर्फ हम गाते थे कि तुम माता पिता बंधु सखा सब हो, लेकिन अनुभव नहीं था, वो जिम्मेवारी नहीं उठाता था। लेकिन अब बाबा संगम युग पर हमारी हरेक बच्चे की हरेक संबंध की जिम्मेवारी बाबा उठाता है, तो हम बाबा को दे देना। बाबा जब उठाने के लिए तैयार है तो हम बाबा को दे दे दे, वो संभालने के लिए तैयार है। तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन करते हो, मैं बैठा हूं ना। लेकिन फिर हम लोगों के अंदर वही दुविधा रहती, पता नहीं बाबा संभालेगा कि नहीं संभालेगा। आप एक बार देखे तो देखो, ये अनुभव किस किस को है जिसकी बाबा जिम्मेवारी संभालता है ना। बाबा को सौंपो है, बाबा कहता है ना, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए बंधा हुआ हूं, मैं आया ही तुम्हारे लिए, है ना। किसके लिए आया? हम बच्चों के लिए बाबा आया ना? हमारे लिए बाबा नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया बाबा हमारे लिए बना रहा है। बाबा ने संगम युग पर जो ये रुद्र अविनाशी रुद्र यज्ञ रचा है बाबा ने, वो किसके लिए रचा है? हम आत्माओं के लिए रचा है कि इस यज्ञ के अंदर जो भी आत्माएं हैं सब अपनी आहुति डालकर हल्के हो जाएं। तो बाबा ने हम सबके लिए ये यज्ञ इसलिए रचा है। लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा सा भी बोझ है, बोझ एक चीज है, जिम्मेवारी अलग है। देखो कहते हैं ना, बोझ और जिम्मेवारी में अंतर है। एक होता है बहुत सा, मुझे करना है, मुझे करना है, मेरा ये जो मैं करूं, ये करूं, वो करूं। एक होती है जिम्मेवारी है। तो बाबा ने जिम्मेवारी के लिए हम बच्चों को कितना अच्छा कहा कि बच्चे तुम संगम युग के ऊपर ये सेवा की जिम्मेवारी का ताज उठाएंगे तो तुम्हें मैं रत्न जड़ित ताज दूंगा। है तो ताज पहनना तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? है? आज किसी को ताज पहना हो तो क्या करेंगे? हाँ मेरे को पहनाओ, मेरे को पहनाओ, मेरे को पहनाओ, सब पहनना चाहेंगे। कोई ऐसा है जो नहीं पहनना चाहेगा? ऐसा तो कोई नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को संगम पर जिम्मेवारी का ताज, और जिम्मेवारी का ताज देते हुए भी बाबा ने हमको हल्का रखा है। कितनी बड़ी सेवा बाबा ने हम बच्चों को दी है। सेवा कोई छोटी नहीं है। सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण करने की जिम्मेवारी उस हर एक आत्मा के ऊपर भगवान ने दी है। और जो बाबा के बच्चे इस जिम्मेवारी को समझ करके चलते हैं, जिम्मेवारी को उठा करके चलते हैं, वो सदा बोझ मुक्त रहते। जिम्मेवारी उठाने वालों को बाबा की मदद मिलती है। भगवान की मदद लेना ये भी कला हमको आनी चाहिए। बाबा हम बच्चों को कैसे मदद करता है उसकी भी कला है। भगवान को भी हमको यूज करना आना चाहिए अपने जीवन में। है कई बार हम देखते हैं कि बाबा की भोली भोली माताएं होती है ना, जिनको ज्ञान कुछ भी नहीं है, गैबी नहीं है ज्ञान का, ज्यादा कुछ समझती भी नहीं है, मुरली भी याद नहीं रहती है, लेकिन एक ही लक्ष्य, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा तू संभाल, तू जिम्मेवार है, तू मेरा है, सब बोझ बाबा को दे देती है। तो बाबा उन आत्माओं की भी इच्छा पूरी कर देता है। बाबा से वो अपना कार्य करा लेती है। और जो पढ़े लिखे होशियार ज्ञानी फलाने समझते हैं, वो सोचते रहते बाबा कैसे मदद करेगा, बाबा आएगा, बाबा हमारे लिए फ्री बैठा है, हैं? सोचते पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान को भी यूज करना आना चाहिए। जितना हम उसको यूज करेंगे उतने हम हल्के रहेंगे। क्यों? बाबा हमारी जिम्मेवारी उठा करके चल रहा है। हमने बाबा के साथ क्या वायदा किया है? लौकिक में एक दूसरे से वायदा करते हैं तो उन वायदों को निभाते हैं, है? मरने तक निभाते हैं। और अगर नहीं निभाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, भाई पापा नहीं निभाया। तो हम बच्चे भी बाबा से, बाबा भी एक बार हम भगवान से वायदा कर लेते हैं तो भगवान अपने उन वायदों को निभाता है। पर करे तो सही, है ना? वायदा करे तो सही ना, तब तो बाबा कहता बच्चे एक कदम तुम्हारा और हजार कदम मेरे। तो पहला कदम किसका है? पहला हिम्मत का कदम मेरा और फिर हजार कदम भगवान की। हम ये कहे बाबा मेरे को मदद करे, बाबा इसको मदद करता है, बाबा इसको मदद करता है, बाबा इसको मदद करता है, मेरे को क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है बाबा? क्योंकि मुझे कराना नहीं आता है। बाबा से मदद लेना नहीं आता है ना? बाबा से मदद ले लेंगे ना तो करेगा बाबा। खाली हम एक हिम्मत रख करके बाबा को कहे बाबा ये आपको करना है, तो बाबा हम बच्चों से एकदम हमको हल्का फरिश्ता बना देता है। और जब तक हम सभी संगम युग पर हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। ब्राह्मण से फरिश्ता, तो फरिश्ता यहां ही बनना है। फरिश्ता मना हल्का, कोई बोझ नहीं, उड़ते चलो मौज में। बाबा उड़ा रहा है, बाबा चला रहा है, हैं? हमको किस बात की चिंता है? जब हम सबने उस सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ लिया, है? किसी व्यक्ति का पड़ा है, किसी गुरु का पकड़ा है, किसी मनुष्य का पकड़ा है, किसी सन्यासी का पकड़ा है, किसी धर्म गुरुओं का पकड़ा है, किसका पकड़ा है? हमारा बाबा सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ का हाथ। जब हमको ये निश्चय है कि मैंने सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ का हाथ पकड़ा है, हम छुड़ा सकते हैं लेकिन बाबा नहीं छुड़ाएगा ना? हम छुड़ा लेंगे क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, है ना? तो माँ बाप का हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करते, फिर माँ बाप पकड़ के ले आते, है ना? तो बाबा से भी हम बच्चे क्या करते, नटखटपना करते, बाबा से हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करते, भाग जाते, फिर बाबा हमको खींच के ले आता है, रोज रोज ले आता है, सवेरे अमृत वेले भी ले आता है, मुरली में भी खींच के ले आता है। कहां जा रहे हो बाबा? मुरली में क्या सुनाता है, क्या सुनाता है? खींच के ले आता है, बच्चे तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारी दिशा बदल रही है, इस दिशा से इस दिशा में चलना है तुमको, खींच के लाता है ना, खींच के लाता है। क्या पड़ी बाबा को है, क्या पड़ी है जो हमको, हमारे ऊपर इतनी मेहनत करता है, है? क्यों नहीं पड़ी है? संबंध है हमारा, हमारा माता पिता है, हमारा अधिकार है, अधिकार देने के लिए आया है। तो इसलिए बाबा को पड़ी है। बाबा कहता है मेरे को ही करना है, जिम्मेवारी मेरी है, है ना। भगवान अपनी जिम्मेवारी लेकर के इस सृष्टि पर आया कि मुझे ये नई दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया बनानी है, मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए हम बच्चों को भी बाबा क्या करता है, उसी रीति चलाता है। कहीं भी अगर हम थोड़ा जाते हैं तो बाबा खींच के ले आता है। मेरा अनुभव है कि बाबा हमेशा हमारा हाथ पकड़ के बाबा चलता है। हमने बाबा के हाथ में अपना हाथ दिया है। अगर हम हाथ छुड़ाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन बाबा से जो वायदा किया है वो अपने वायदे अनुसार हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे, हम भूल जाएंगे, लेकिन बाबा हम बच्चों को वो अपना हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। कभी मां बाप हाथ छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, बच्चे छोड़ते हैं, मां बाप बेवफा नहीं होते हैं, बच्चे बेवफा बनते हैं। वो तो फिर भी खींच खींच के, खींच खींच के ले आते, कहां जाएंगे मेरे बच्चे, उस दुनिया में जाएंगे, परेशान होंगे, हैरान होंगे, अरे दुख की दुनिया से तो मैं बच्चों को सुख की दुनिया में ले आया, अब फिर जा रहे हैं। तो बाबा क्या करता है, खींच के ले आता है। देखो बाबा रोज मुरली में कितना हम बच्चों को खींचता है, अनुभव करते हो सभी? बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर कितना खींचता है, पकड़ के रखा है, कहीं मेरे बच्चे कहीं चले ना जाए, कहीं रावण के न बन जाए, उस दुनिया में ना चले जाए। बाबा को डर रहता है, बाबा को डर रहता है ना, इसलिए पहरा देके बैठा है। हमारे ऊपर बाबा पहरा देके बैठा है। क्यों? हम भगवान के बच्चे हैं, तो सदा अपने को भगवान का बच्चा समझ करके चलो। जितना हम भगवान का बच्चा अपने को समझ करके चलेंगे, उतने सब बोझों से हल्के रहेंगे। देखो बच्चा हल्का होता है, बच्चे को बाबा क्या कहता है, महात्मा। बच्चे को बाबा क्या कहता है, महात्मा। क्यों? बच्चे को कोई भी विकारों की नॉलेज नहीं है, वो महात्मा है। और महात्मा पवित्र होते, उसको संसार की कोई नॉलेज नहीं है। बाबा ने भी हम बच्चों को कहा, तुम मेरे बच्चे हो, अब भूलो इस संसार को, इसकी कोई नॉलेज नहीं है हमको, बस मैं और मेरा बाबा, बस उसी मस्ती में अगर हम रहेंगे तो सदैव हल्के रहेंगे। कितनी भी जिम्मेवारी का कार्य मिल जाता है, अगर बाबा मेरे साथ है तो वो बोझ नहीं लगेगा। देखो अभी दादी का मास चल रहा है, कौन सा मास चल रहा है, दादी का चल रहा है, और हम रोज दादी की विशेषताएं सुन रहे हैं, पिछले मास में दीदी की विशेषताएं सुनी, इस मास में हम दादी की विशेषताएं सुन रहे हैं। दादी का स्लोगन क्या था? तीन थे ना, सबको पक्के याद है, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। अब ये तीनों ही गुण अगर हम अपने जीवन के अंदर उतार लेते हैं तो हम सब बोझों से हल्के हो जाएंगे। निमित्त, ट्रस्टी है, निमित्त अपने को मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, कराने वाला बाबा है, जैसे बाबा कराए मुझे वैसे करना है। देखो, बोझ से अपने को हल्का बनाना है तो मैं कहती हूं आप कठपुतली बन जाओ, है ना? कठपुतली क्या करती है? कब नाचती है? जब उसकी डोरी मालिक के हाथ में होती है। और जितनी मालिक के हाथ में डोरी होगी उतनी कठपुतली नाचेगी और लोग एंजॉय करेंगे। तो हमारा भी मालिक कौन है? बाबा है। अपनी डोरी उसके हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना? बाबा को दे दो, बाबा हमको जैसे चलाए, जिस रीति से चलाए, अगर हम अपने आप को बाबा को सौंप देते हैं तो बाबा हम बच्चों को बहुत स्मूथ चलाएगा। अपने ऊपर बोझ लेके नहीं चलो। भगवान कहता है बोझ वाले कौन? कलयुगी मनुष्य। भगवान के बच्चे बोझ से हल्के, परे, न्यारे, फरिश्ते। तो बाबा ने कहा बोझ से हल्का होने के लिए अपने को निमित्त समझो। मैं करने वाला हूं, कराने वाला कौन है? बाबा है। बाबा करा रहा है मेरे से, मैं नहीं कर रही हूं। देखो, अगर हम कभी 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 सोचते हैं कि हम इस संसार में क्या थे, मेरे को बहुत आता है इस चीज का, मैं क्या थी, कहां उस दुनिया में थे, है? लेकिन भगवान ने कहां बिठाया? कहां बिठाया बाबा ने? ये गद्दी किसने दी? बाबा ने दी। कितनी रिस्पेक्ट की ये गद्दी, कितने मान की ये गद्दी, कितनी शक्तिशाली ये गद्दी। बाबा को पकड़ा ना, नहीं तो दुनिया के ऐसे ही होते जैसे और दुनिया में घूम रहे, ऐसे हम भी होते। लेकिन भगवान ने हमारा हाथ पकड़ करके, उसने पकड़ा और हमने भी पकड़ा, दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। वो भी पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन कई छुड़ा के भाग जाते। तो हमने भी बाबा का पकड़ा तो बाबा चला रहा है, हर कार्य बाबा करा रहा है। कभी ये फील ही नहीं होता है इतना बड़ा काम है, ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। हमने 60 साल के जीवन की यात्रा में कभी भी अपने को बोझ अनुभव नहीं किया। हमेशा बाबा तो कराता है, बाबा का कार्य है और हमें करना है, उसका हाथ नहीं छोड़ना। हम तो निमित्त है, हमसे बाबा करा रहा है, हम तो बाबा के इंस्ट्रूमेंट है। हम हरेक बाबा का इंस्ट्रूमेंट, हरेक बच्चा बाबा का इंस्ट्रूमेंट है और हरेक बच्चे को बाबा ने संसार की स्टेज पर बिठाया है और संसार की स्टेज पर हमको कौन सा पार्ट बजाना है, है? भाई पार्टधारी बने, कौन से पार्टधारी बने? हीरो पार्टधारी, ऐसे साधारण पार्टधारी नहीं, क्या बनना है? हीरो पार्टधारी। तो वैल्यू है, है? अगर ऐसे वैसे बन गए उसकी क्या वैल्यू है? तो हीरो पार्टधारी हम कैसे बनेंगे? जो बाबा जैसे कराए वैसे मुझे करना है, अपने को सौंप दो। तो गीत सुना ना, सौंप दो बाबा को, समर्पित कर दो, सौंप दो। अब बाबा हमको जैसे चलाए वैसे मुझे चलना। तो अपने को क्या समझना है? निमित्त। और जो निमित्त समझेगा वो ही निर्माण बनेगा, है ना? अगर निमित्त नहीं समझा है तो निर्माण नहीं बन सकता है। उसको अभिमान आएगा, मैं करता हूं, तो क्या आएगा? निर्माण। निर्माण कहेंगे उसको, मैं करता हूं, तो निर्माण तो आ ही नहीं सकती ना। जो निमित्त समझेगा उसको निर्माणता आएगी, और जिसके अंदर निर्माणता होगी उसकी वाणी निर्मल होगी, अभिमान नहीं होगा ना। वाणी के अंदर क्या होगा? अभिमान नहीं होगा। तो दादी का जो ये स्लोगन हम सबके लिए है, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, दादी ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया हम सबको कैसे अपने को निमित्त बन करके। बाबा दादी ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, और दादी कितनी हल्की थी। हम तो दादी के साथ में बहुत अंग संग रही है, है? दादी एकदम न्यारी थी, हल्की थी, कोई चिंता नहीं। बाबा है ना, करा रहा है ना बाबा, मैं क्यों चिंता करूं? इससे दादी ने कितना श्रेष्ठ कार्य किया। और एक ही लक्ष्य, बस मुझे बाबा जो कराए मुझे करना है। हमें भी बाबा हमसे जो कराए, हम कह तो देते बाबा जो कराए वो करेंगे, लेकिन अपने अंदर उस चीज को गहराई में देखें कि बाबा हमसे कराए। एक दादी का अनुभव सुनाती हूं। बड़ी दादी थी ना, तो दादी का संस्कार तो मैंने बताया ना, एकदम निर्मल स्वभाव था दादी का, सबसे मिलनसार स्वभाव था। दादी को जरा भी अभिमान नहीं था, सबके साथ दादी मिल जाती थी, सबसे दादी बात करती थी और सबके उत्तर देती थी, है ना? जो भी है, कोई भी समस्या दादी के पास लेके दादी उसका निवारण करती थी। तो एक बार मधुबन में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जो थे वो आए और दादी जी से मिल रहे थे, बहुत क्लोज हो गए थे। ज्ञान उनको बहुत अच्छा लगता था, बाबा का घर भी बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे दादी से बातचीत करते करते तो दादी को उन्होंने एक प्रश्न किया, दादी मैं एक बात पूछूं आपसे। दादी का पूछो कि दादी मैं एक चीज देखता हूं, आपके पास जो भी आता है आप उसको इतना अच्छा जवाब देते, सबको संतुष्ट कर देते, ये कला आपकी कैसे आई? तो ना दादी से ये प्रश्न किया कि ये कला कैसे आई आपके अंदर, आप कैसे सबको संतुष्ट कर सकते, सबके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते? और प्रश्न का उत्तर देकर वो आत्मा संतुष्ट हो जाए तो उसकी क्या विधि है। तो पता दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा देखो मैं कोई भी मेरे पास आता है, कोई भी समस्या लेके आता है, कोई भी प्रश्न लेके आता है, मैं सुनती हूं और सुन करके बाबा को बोलती हूं, बाबा अब इसका उत्तर आपको देना है मेरे द्वारा, मैं नहीं, मैं नहीं दूंगी, आपको देना है। तो कहा बाबा उत्तर देता है, मैं तो देती नहीं, करण करा बनार वो है, करा रहा है मेरे से, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं। उनको इतना अच्छा लगा वो बात, कहा ना जो दादी के अंदर वो संस्कार निमित्त, मैं निमित्त हूं, बाबा करा रहा है और बाबा जो कराएगा वो राइट कराएगा, भगवान तो सत्य है ना, बाबा हर आत्मा को संतुष्ट करेगा, है ना। तो दादी ने अपने को कितना निमित्त बनाया, मैं करती हूं जीसी नहीं थी। ओम शांति। तो मैं सुना रही थी कि जैसे दादी ने अपने जीवन में ये तीनों स्लोगन पक्के किए थे, ऐसे हम सी आज दादी का मास है, इसमें अपने जीवन के अंदर ये तीनों स्लोगन हम पक्के करके जाएं। अगर हमारे जीवन के अंदर ये तीनों पक्के स्लोगन है तो हम आत्मा हर बोझ से हल्की हो जाएगी, कोई बोझ नहीं है, बस बाबा कहता अभी मेरे को सौंप दो, जैसे बड़ों ने सौंपा वैसे हमको भी बाबा को सौंप देना है, भगवान को हमको यूज करना आना चाहिए, बाबा हमारा सुने तो हम सुनाए तो वो सुनेगा जरूर। तो इसीलिए बाबा को अपनी सब जिम्मेवारी सौंप दो, बाबा लौकिक भी उठाएगा परलौकिक भी उठाएगा, हा? कोई भी जिम्मेवारी उठाने के लिए भगवान बंधा हुआ है, क्यों, उसने हमसे अभी संगम पर सर्व संबंध हमारे साथ जोड़े हैं, इसलिए बाबा हमारा जिम्मेवार है। तब कहा ना सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, कितना अच्छा गीत है, तो सरल हो जाएगा, बाबा को सौंप दो, बाबा तू जाने तेरा काम जाने, निसंकल्प हो जाओ। अगर संकल्प विकल्प करके हम कोई भी बात को बड़ा बना देते हैं, बात छोटी होती है, कहते ना जैसे सोच सोच के बात को बड़ी कर देते हैं, तो कोई भी संकल्प विकल्प बातें आती हैं वो आएंगी, लेकिन उनका मार्गदर्शन तो हमको मिल रहा है ना, बातों को कैसे हमको हटाना है वो मार्गदर्शन बाबा रोज देता है, उसके लिए हमें अपनी दिनचर्या के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है, अपने को शक्तिशाली बनाना है तो बाबा से अमृत वेले सर्व शक्तियों की किरणों को धारण करना है। जो अमृत वेले बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें धारण कर लेता है वो आत्मा सदा हल्की रहती है, तो वो हल्की बाबा हमको वो हल्का बना रहा है, सर्व हमारे बोझ उठा लिए, फिर भी देखो जीवन के अंदर चलते चलते पेपर आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो उसका मार्गदर्शन बाबा मुरली में देता है। तो दो बातें, बाबा की याद अमृत वेला और बाबा की मुरली, इसके ऊपर हमारा जितना अटेंशन होगा उतना हम बोझ से हल्के रहेंगे। ओम शांति।